श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हम महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण तहसील के निमकर कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनिल राजवंशी से बातचीत करने वाले हैं। उन्होंने बीते चार दशकों में तकनीक के जरिए गांवों को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार ने उन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनके कामकाज के बारे में हम जानेंगे, ग्राम विकास में उनका योगदान है, इसके बारे में भी हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। राजवंशी सर, आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत धन्यवाद।
सर, पहला सवाल, आप पहले लखनऊ में आपका जन्म हुआ, उसके बाद कानपुर में IIT से अपने स्नातक की पदवी प्राप्त किया और फिर बाद में आप US भी गए और US में पढ़ाई करने के बाद वहाँ आपने 2-2.5 साल काम भी किया और सीधे आप पहुँचे सतारा जिले के फलटण में, एक देहाती गांव, पूरा खेती पे निर्भर गांव। और यहाँ आकर भी आपने इथेनॉल से चलने वाला पहला स्टोव बनाया, सौर ऊर्जा पे काम किया, शायद दुनिया की पहली ई रिक्शा आपने बनाई। तो ये सब ग्राम विकास में योगदान देने वाले प्रोडक्ट आपको बनाते समय आपकी प्रेरणा क्या थी, या आपको प्रॉब्लम दिख गए और आप उसको सुलझाने में लग गए?
पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म लखनऊ में हुआ 1950 में। उसके बाद मैं वहीं पर मैं पढ़ा। मेरे फादर जो थे वो गांधी जी के साथ जेल गए थे 1942 के मूवमेंट में। तो हमारे फादर का नाम था जगदीश राजवंशी। हमने लखनऊ में पढ़ाई करी और 1966 में हमने सीने कैम्ब्रिज किया और उसके बाद में हम IIT कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने चले गए। BTech और MTech वहाँ से किया और जैसे सब IIT कानपुर के बच्चे जाते थे, हम भी अमेरिका चले गए 1974 में। अमेरिका में हमने एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा, वहाँ पर दुनिया के सबसे फॉरमोस्ट सोलर एनर्जी के एक्सपर्ट थे डॉक्टर एरिक फार्बर, उनके साथ उनके अंडर हमने PhD करी और PhD करने के बाद में हमने 2.5 साल वहाँ पढ़ाया एज अ फैकल्टी मेम्बर। और उसके बाद में एक जुनून, एक पागलपन और एक एरोगेंस, इन तीनों का जो मिक्सण है ये बड़ा लीथल मिक्सण होता है। और इस लीथल मिक्सण ना होता तो मैं कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उसमें जो था एरोगेंस ये था कि हमने जो भी सीखा है हम उससे देश को चेंज कर देंगे। ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। गांधी जी और बड़े बड़े लोग चेंज नहीं कर पाए तो हम कितने बेवकूफ़ थे सोचने वाले। तो हिंदुस्तान ने कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इंडिया ने मुझे चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जब हम आए तो देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कैसी सिचुएशन है। तो इसने हमें ह्यूमिलिटी सिखाया, ये सिखाया कि कैसे सस्टेनेबली रहो और स्पिरिचुअलिटी पर गौर करना शुरू करा। तो ये इसकी वजह से आया। अगर हम जरा से भी इंटेलिजेंट होते तो कभी वापस ना आते, क्योंकि हमारे सारे जो क्लासमेट्स थे वो सिलिकन वैली में बड़े बड़े ओहदे पर और कितने वो बड़े वो काम कर रहे हैं और हम भी जो थे यही करते, तो ऐसे ही होता। तो जब यहाँ पर आए हम तो ये था कि भाई प्रॉब्लम्स चारों तरफ हैं। और यही सबसे बड़ी जो है, मैं इस इंटरव्यू के थ्रू यंग बच्चों को बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो चारों तरफ होती हैं और उनको ही जो है देखकर सॉल्व करना चाहिए। अगर उनको देखकर सॉल्व नहीं किया और देश भर की प्रॉब्लम सोचो, अमेरिका की प्रॉब्लम सोचो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर कोई अगर चारों तरफ की प्रॉब्लम्स जो आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू करेगा तो उससे ही जो है देश आगे बढ़ेगा। और वही जो प्रधानमंत्री ने कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, उसका जो है एक स्वरूप यही है कि अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। तो जब हम शुशु में आए यहाँ पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। फलटण ऐसी जगह थी कि जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जिसको बोलते थे ट्रंक कॉल, उसको करने के लिए मुझे बहुत दफ़े बस में बैठकर पूना जाना पड़ता था, फिर वहाँ से मैं ट्रंक कॉल करता था। कुछ भी यहाँ नहीं मिलता नहीं था, लेकिन एक जुनून था। और ये हम हमेशा सोचते थे कि अगर हम भी यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि 7 साल रहने के बाद में कोई हमारे क्लासमेट में कोई नहीं आया, हम ही अकेले आए थे, वो भी रूरल एरिया में, तो हमें ये लगता था कि अगर हम भी भाग जाएंगे तो हम भी जो है एक करोड़ों में वो एक हो जाएंगे जो आए चले गए। अगर हम समझते हैं कि हम डिफरेंट थे तो ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और उसी वजह से जो है यहाँ पर हम रहे। और मैं समझता हूँ कि जो भी मुझे पुरस्कार मिले, जो भी कुछ हुआ, इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो यंग बच्चे हैं उनको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि एक छोटी सी जगह रहकर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर और बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम शुशु में आए तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम थी, तो हम कंदील में पढ़ते थे, लैंटर्न में पढ़ते थे। तो लैंटर्न जो थी वो 1870 में बनाई गई थी, तो हमने कहा कि ये कैसी अजीब सी चीज़ है, इतनी पुरानी लैंटर्न जो है उसका कोई बेटरमेंट ही नहीं हुआ है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमने उस पर काम करना शुरू करा, और फिर भारत सरकार से हमें थोड़ा योगदान मिला एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एनर्जी से, और उस पर हमने एक बहुत बड़ा काम किया, और उसकी वजह से वो नूरी लैंटर्न बनी। तो नूरी लैंटर्न जो बनी वो उसको हमने जो था नूरी लैंटर्न को फिर सरकार को दिखाया, सब बहुत कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन इतने में सरकार की चीज़ें चेंज होती नहीं, केरोसिन उन्होंने बंद कर दिया, जगह जगह वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते रहे, तो वो लैंटर्न का काम जो था फिर भी हमने उसको रोका नहीं। दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पर फल्टन में गन्ने की खेती होती है, और गन्ने की खेती होने के बाद में गन्ने को जब हार्वेस्ट करते हैं तो जो उसका पाचट है और जो उसकी लीव्स हैं उनको यहाँ पर किसान जो थे वो डालकर उसमें आग लगाते थे, क्योंकि वो वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो आग लगाने में एक तो पोल्यूशन होता था और दूसरा इतना यूज़फुल एनर्जी वेस्ट होती थी। तो हमने उस पर काम करना शुरू करा और हमने बहुत बड़ा काम किया और दुनिया का पहला गैसीफायर बनाया जो कि शुगर केन लीव चलता था। और इन सभी चीज़ों में मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमने चीज़ों को देखा, सोचा और उस पर काम किया, तो इन सब चीज़ों में हम करीब 20-25 साल अहेड थे। और 20-25 साल अहेड होने से एक नुकसान ये होता है कि कोई तवज्जो नहीं करता है, और उसके बाद में आपने इन्वेंट कर दिया, कोई उसको आगे बढ़ाता नहीं है। और आज जो है यूपी दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है रेसिड्यूज़ बर्न करने का, अब वो समझते हैं कि जो हमने काम किया था उसका कितना यूज़फुलनेस है। फिर हम लखनऊ से आते हैं तो वहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो रिक्शा था, और हमेशा हमें ये लगता था कि वो बहुत बेकार की चीज़ है, क्योंकि वो 1920 से कोई उसका इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। और मैं समझता था कि एक आदमी जो है बेचारा दूसरे आदमियों को कंधे पर ले आता है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। 1990s में इलेक्ट्रिक मोटर्स आने शुरू हो गए थे, तो हमने कहा कि हम क्यों ना इसको इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाएं। उस समय दुनिया में कोई नहीं सोचता था ई रिक्शा के बारे में, तो हम पहले संस्था थे जिसने ई रिक्शा को बनाया। तो 1995 से हमने शुरू किया और 2000 में इंडिया की फर्स्ट ई रिक्शा हमने बनाई, इनफैक्ट हो सकता है कि दुनिया की पहली ई रिक्शा हो। और उसके बाद में ये बहुत फैला ई रिक्शा, ये बहुत यूज़फुल है, नॉन पोल्यूटिंग है। तो इस तरह की चीज़ें जो थी हमने बहुत करी जिससे आगे बढ़ा। दूसरा जो था, जब हमने ये पाचट काम कर रहे थे तभी हमने सोचा कि जब पाचट के अलावा बहुत से और भी रेसिड्यूज़ होते हैं जो कि किसान जलाते हैं जब हो जाता है, क्यों नहीं इससे पावर बनाई जाए। तो ये हमने एक बड़ी स्टडी करी, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि तालुका एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी, और ये बड़ी हमें खुशी है कि वी वर द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ दिस प्रोग्राम, और भारत सरकार थ्रू MNRE ने इसको चलाया। और आज जो है देश में अगर बायोमास एनर्जी प्रोग्राम है तो वो हम समझते हैं कि हमारी वजह से आया, और वो उस प्रोग्राम से भारत सरकार ने सारे देश में तालुका बायोमास प्रोफाइल तैयार करी, जैसे हमने किया था फल्टन के लिए, ऐसे सारे देश में हर तालुका के लिए कि कितना वहाँ पर बायोमास प्रोड्यूस होता है जिससे कि कितनी हम पावर बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से करीब 150 पावर प्लांट्स ऐसे लगाए जा चुके हैं, और मैं समझता हूँ कि और भी लगाए जा सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा और एनर्जी भी बनेगी। तो इस तरह से हमने बहुत चीज़ें करी। फिर हमने अपनी लैंटर्न का काम छोड़ा नहीं, हमने लोगों से बात करी जो गरीब लोग थे, तो उन्होंने कहा साहब हमें दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो लाइटिंग की और दूसरी जो है अच्छे ईंधन की, अच्छे स्टोव की। तो हमने दोनों को कंबाइन किया और एक नई डिवाइस प्रोड्यूस करी, लैंड स्टोव। लैंड स्टोव का मतलब होता है लैंटर्न कम स्टोव, दोनों। तो ये सोचा कि भाई लैंड स्टोव जो है, अभी जो है हम ईंधन यूज़ करते हैं लकड़ी और बाकी, उससे बहुत पोल्यूशन होता है, क्यों नहीं अपना ही ईंधन बनाया जाए, और वो था एथेनॉल। तो एथेनॉल का काम जो था, मैं समझता हूँ दुनिया में पहला हमारा था कि जो हम अपने आप ही ईंधन बनाएंगे और उसको ही यूज़ करेंगे। एथेनॉल जो है बहुत ही यूज़फुल फ्यूल है, और सरकार जो है अब कह रही है कि कार में चलाओ, लेकिन मैं समझता था और अभी समझता हूँ कि घर के लिए ये बेस्ट फ्यूल है, बिकॉज नॉन पोल्यूटिंग और हम बना सकते हैं। तो इस पर हमने काम किया। तो इस पर काम करने पर हमें स्वीडन में स्टॉकहोम में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। हमारे साथ जिनको पुरस्कार मिला था वो टेस्ला मोटर्स थे, तो लेकिन हम पहले एनजीओ थे जिसको पुरस्कार मिला। लेकिन भारत सरकार की इतनी स्ट्रिंजेंट एक्साइज लॉज हैं अल्कोहल के कि वो कोई भी घर में यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसलिए जो था वो आगे चला नहीं। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि अल्कोहल कैन बी अ वेरी गुड थिंग। इसके जैसे हमने काम किया, इससे सारी दुनिया में इसका प्रचार हुआ, और बहुत से देश हैं आज जो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। वो ये हमेशा बोलते हैं कि ये सब काम जो था वो निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हुआ, क्योंकि करीब 2-3 साल पहले बड़ी भारी एक गोष्ठी हुई थी दिल्ली में कुकिंग एनर्जी पर, तो वहाँ पर पूरा सेशंस थे अल्कोहल पर, और उन्होंने सब ने कहा कि आप ही इस प्रोग्राम के फादर हो। तो ये अच्छा लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो कि हमने शुरू करी और उसके बाद में जो है वो आगे बढ़ी।
राजवंशी सर, आपके जो जो आपने प्रोडक्ट बनाए वो समय से बहुत पहले थे, लेकिन एक आदमी की सोच और उसका इस्तेमाल पूरा देश जब करना हो तो आपके साथ सरकार भी होनी चाहिए। तो ये जब सब प्रोडक्ट है या पारंपरिक ऊर्जा का इस्तेमाल है, इस सब के बारे में, ई व्हीकल है, इस सब के बारे में आपने बहुत साल पहले सोचा, लेकिन अभी सरकार अभी अभी सोचना शुरू किया है, तो सरकार की नीति आप जैसे सोचते हैं वैसे ही है या कुछ आप उसमें बदलाव चाहते हैं? और उस पर एक सवाल और ऐड भी करूँगा कि मूलभूत शिक्षा स्तर पे भी उस पर कुछ काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को उस पर कुछ काम करना चाहिए, बच्चों में उसका समझदारी हो, जानकारी हो, इसके लिए पाठ्यक्रम में भी कुछ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर?
ये आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में आप देखिए कि करप्शन और नेपोटिज्म काफ़ी है, तो ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे दूर की सोच में बाधा डालती हैं, क्योंकि हर एक को वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। क्योंकि जब अगर आप खाली देश को के बारे में सोचेंगे तो बहुत से लोग जो हैं फिर इसमें हाथ पटाते हैं, लेकिन बहुत दफ़े ऐसा होता है कि देश के बारे में लोग कम सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। हाँ, ये होता है कि इस देश में एक ऑल्सो अजीब चीज़ है, जो विदेश में होता है फिर हम उसको कॉपी करते हैं। हमने ये दिखाया कि प्रॉब्लम्स आपकी सामने हैं, अगर और हम ही लोग हैं जो कि सारे दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो बजाय वहाँ की कंपनी चलाने के यहीं पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें अपने ही नज़रिए से, अपने ही निगाह से, अपनी ही सोल्यूशन दिखाएँ, तो वी कैन प्रोड्यूस ग्रेट थिंग्स फॉर द वर्ल्ड। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि किस तरह से शिक्षा दी जाए ऐसे कि जिससे बच्चे जो यहीं रहें। देखिए, हम जो थे वापस इसलिए आए क्योंकि हमारे फादर गांधी जी के साथ जेल गए थे, कुछ ऐसे हमारे संस्कार थे, हमारा सोचने का ढंग ऐसा था, आई वॉज अटैच टू द स्टोरी ऑफ इंडिया। आजकल के बच्चे जो हैं, जिसे उनको दिन रात जो है एग्ज़ाम्स ही पास करने का होता है, हमेशा ये बताया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ ख़राब है, यहाँ चीज़ ख़राब है, तो उनको कैसे देश से लगाव होगा। देश से लगाव तभी होता है जब आप उनको प्राचीन सभ्यता के बारे में बताएंगे, जब प्राचीन संस्कृति के बारे में बताएंगे, रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिटी, जो ग्रेट थॉट है, हमारे ग्रेट ग्रंथ हैं, पंचतंत्र हैं, कितनी कितनी चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे, यहाँ की म्यूज़िक के बारे में बताएंगे, तो उनको लगाव होगा। उस लगाव से वो कहीं भी पढ़ें, लेकिन हमेशा जो है वो ये सोचेंगे कि भाई जाकर कैसे इस देश को हेल्प करना चाहिए। और जब वो बच्चे जो है पढ़ के वापस आएंगे और फोकस करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तब हम बहुत नई चीज़ें बना सकते हैं। हमेशा अगर देखिए क्या होता है कि ये तो मैं बता रहा हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द साइंटिस्ट एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्चर्स, जब पॉलिटिशियंस जो होते हैं दे आर ओनली कंसर्न अबाउट कि किस तरह से बाहर की चीज़ें लाई जाएँ यहाँ पर, किस तरह से जो है बस कॉपी करा जाए, तब कुछ नहीं होता है। अल्कोहल पर हमने कितने पहले पर काम शुरू किया, आज अल्कोहल को सडनली वो हो गया है, और जबकि गलत वो है, क्योंकि अल्कोहल जो है बहुत ही बढ़िया फ्यूल है, इस पर केमिकल इंडस्ट्रीज़ बननी चाहिए। ये बहुत ही बेकार की कार जो हैं, जो 2% एफिशिएंट कार्स हैं उनके लिए यूज़ कराया जा रहा है, ये बहुत बेकार की चीज़ है। व्हाट वी शुड बी डूइंग इज़ वी शुड बी प्रोड्यूसिंग ग्रेट इंजीनियर्स टू इम्प्रूव द इंटरनल कम्बस्चन इंजन। हम रिसर्च जो है बहुत कम करते हैं इस देश में, हमारा जो अमाउंट है इज 0.01% ऑफ आवर GDP जो कि रिसर्च जाता है। कुछ बड़ी जो बढ़िया कंट्रीज़ हैं जैसे इसराइल, अमेरिका एक्सेट्रा, वहाँ पर 2.5-3% जाता है, और उनकी जो है GDP कितनी ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी देश में बहुत अच्छे लोग हैं, ये राइट फ्रॉम बिगनिंग अगर हम एक नया तरीका का इकोसिस्टम बनाएं बच्चों के लिए कि किस तरह से चीज़ों को देखो और उससे उसी को सॉल्व करो, तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि अमेरिका और यूरोप में जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो ऐसा काम करते हैं जो यहाँ पर MSc और PhD भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। हम हमेशा ये बताते हैं कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है उनको सॉल्व करो। हमारे यहाँ पर अभी हमारी आबादी है 1.4 बिलियन प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स अगर सब हम लोग लग जाएं, जुट जाएं, तो ये देश जो है आत्मनिर्भर तो हो ही जाएगा, ये दुनिया भर को सिखा सकता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो 2/5 ऑफ मैनकाइंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और जब वो पूरी प्रणाली चेंज करेंगे हम लोग, जब इसमें हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्ज़ाम पास करने नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएंगी तो सारा देश जो चेंज हो जाएगा।
सरकार की नीति के बारे में आपने बताना है कि पारंपरिक ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसलिए सरकार ने और क्या करना चाहिए कि यहाँ के लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करें उसको इस्तेमाल में लाने के लिए।
नहीं, मैं समझता हूँ कि अब ये मोदी जी ने एक काम करना शुरू करा है, COP26 में उन्होंने ये चैलेंज भी दिया कि हम बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, खाली बाहर से सोलर पैनल्स ले आना, लगाना, ये तो धंधे वाली बात हो गई है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पर बहुत रिसर्च हो, जहाँ पर लोग सब इन्वॉल्व हों। वो इन्वॉल्वमेंट और रिसर्च जो है वो नहीं है। तो उससे होता क्या है कि जब आप खाली ये चीज़ें लेते आए तो वो तो पेपर पर दिखा दिया कि लग गई हैं, उसका आपको इनकम टैक्स इंसेंटिव मिल गया, काम करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि देर शुड बी अ टोटल इन्वॉल्वमेंट, एंड दैट कैन ओनली कम व्हेन लॉट ऑफ पीपल इन दिस कंट्री वर्क ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने IITs और ये सब जो हैं ये बजाय विदेश की प्रॉब्लम सॉल्व करने के अपनी प्रॉब्लम जो हैं तो सॉल्व करें। और इसमें सरकार जो है ये कह सकती है कि भाई हम पैसा देते हैं आपको, इसमें इतना परसेंटेज जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने के लिए लगेगा, देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने को लगेगा, एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, तो वो तभी हो सकता है। और ये एक दिन में वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इस तरह से ही जो है ये चीज़ें बाहर फैलनी चाहिए कि जो फ्यूचर है वो यहाँ के बच्चों का है. हाउ डू वी इंस्पायर देम टू वर्क फॉर आवर प्रॉब्लम्स थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी. जब आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते रहेंगे तो फिर वो सोचेंगे कि भाई कहाँ पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ इट शुड बी. जब आप उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे उस और हमेशा बात करेंगे कि भाई यहाँ पे चीज़ें ख़राब हैं, तो वो हमेशा हर मैं 6 साल पहले 5 साल पहले मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया था IIT कानपुर में. लेक्चर के बाद में मैंने कहा बच्चों से, करीब 250-300 बच्चे थे, मैंने कहा उनसे कि अगर मेरे पास में पावर है कि आप सबको ग्रीन कार्ड दे दूँ तो आप कौन कौन, सब ने हाथ ऊपर कर दिए. ऐसा हमने क्यों किया है कि जिससे जो है इस देश के बच्चे जो हैं हमेशा बाहर भागने चक्कर में रहते हैं. वी शुड क्रिएट इकोसिस्टम कि यहीं रहकर वो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. कितनी चैलेंजिंग है, उनको इंसेंटिव देना चाहिए, उनको जो है उनका एंथुसियाज्म बढ़ाना चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनको ही खुशी होगी.
सर, भारत विश्व की एक बहुत प्राचीन सभ्यता है. यहाँ का अध्यात्म का विचार पूरी दुनिया को आकर्षित करता है. आप इस अध्यात्म को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसमें आनंद निर्मिति का भी विचार रखते हैं, इसको बहुत पुरस्कार भी करते हैं. इस संकल्पना को आप विस्तार से रखेंगे तो लोगों को और समझ में आएगा. कैसे विस्तार से रखेंगे इसको?
देखिए, मैं जब 13 साल का था तो मुझे मेरे फादर ने महात्मा गांधी की आत्मकथा मेरे बर्थडे पर प्रेजेंट करी थी. तो जब मैंने उसको पढ़ा, हिंदी में थी वो, वैसे तो मैं इंग्लिश कौन पढ़ता था लेकिन मैं हिंदी अच्छी पढ़ लेता था, तो हिंदी में मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरा एकदम से एक तरफ से स्विच खुल गया और उसके ज़रिए मैंने बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी पर, तो मैं मेडिटेशन करने लगा, पढ़ने लगा. तो वो चीज़ जो थी वो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही बढ़िया थी. और मैं समझता हूँ कि सभी बच्चों को राइट फ्रॉम बिगनिंग स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करवाना चाहिए. वो तभी हो सकता है जब हमारे पास टीचर्स हों. उसको अगर एक कोर्स बना दिया जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा. वी शुड इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट द ग्रेट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस ऑफ दिस कंट्री. और जब स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस लर्न करेंगे तो हमें इस धरती से लगाव होगा, क्योंकि इसी धरती ने प्रोड्यूस किया है. और जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ थॉट है जो कि मैनकाइंड को किसी भी देश ने दिया. मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मे बी आई एम बायस्ड, और इस पर मैंने बहुत लिखा है. मेरे करीब 150 आर्टिकल्स छपे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्पीकिंग ट्री में. मेरी 2 पुस्तकें हैं. और क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैंने ये सोचा कि स्पिरिचुअलिटी प्लस टेक्नोलॉजी विल प्रोड्यूस सस्टेनेबिलिटी एंड हैप्पीनेस. और यही जो है फोकस है मेरी लास्ट बुक का. उसका नाम है एक्सप्लोरिंग द माइंड ऑफ गॉड, हाउ टेक्नोलॉजी गाइडेड बाय स्पिरिचुअलिटी कैन प्रोड्यूस हैप्पीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी. और मैं समझता हूँ कि ये एक नया पैराडाइम है डेवलपमेंट का, भारत के लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए. स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको विजडम देती है कि जो भी आप काम करेंगे उसको सोच समझ के करेंगे. टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाती है, सिंप्लीफाई करती है, अच्छा करती है. अगर आप जो है विजडम से टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे तो उससे हवस क्रिएट होती है. और वही जो आज आप देख रहे हैं, हवस, आप जो देख रहे हैं लालच, जो देख रहे हैं पैसे के पीछे भागना, ये टेक्नोलॉजी ही उसको आगे बढ़ा रही है. अगर आपके पास में विजडम हो तो आपको ये लगेगा कि भाई आप एक बुशर्ट पहनते हैं, एक पैंट पहनते हैं, तो 400 बुशर्ट और 400 पैंट की क्या ज़रूरत है. वो हवस है, वो आपकी इनसिक्योरिटी दिखाती है. वो इनसिक्योरिटी तभी आती है जब आपका माइंड जो है वो अस्थिर है. तो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को राइट फ्रॉम बिगनिंग यही बताया जाए कि किस तरह से अंदर झांको, अपने को देखो, सोचो. आज जो है हम जो SMS और ये जो लगे रहते हैं इसमें हट कर थोड़ा सा सोचें, कंटेम्पलेट करें, तो ये चीज़ें आगे बहुत बढ़ सकती हैं. तो मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को बहुत प्रचार करा जाए। और जैसे आप मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी के थ्रू मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस बारे में सोचें कि हाउ स्पिरिचुअलिटी एंड टेक्नोलॉजी कैन प्रोड्यूस हैप्पीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये बड़ी भारी चीज़ होगी इस देश को। इस देश की महानता ये रही है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इट इज़ गिवन न्यू थाट। बुद्धिज़्म आया, अशोक का थाट आया, और ढेर सारे लोग आए, योग आया, गांधी जी। मैं समझता हूँ कि ये भी एक नया थाट है, स्पिरिचुअलिटी प्लस टेक्नोलॉजी। और मैं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाले युग में इसका बड़ा भारी महत्व होगा।
डॉक्टर अनिल राजवंशी जी, फिर से ऊर्जा के बारे में बातचीत करते हैं कि ये पारंपरिक ऊर्जा निर्मिति में अब खनिज तेल है, कोयला है, अणु ऊर्जा है, क्या ये पारंपरिक ऊर्जा से रिप्लेस हो सकते हैं? भारत जैसे देश में ये संभावना कितनी है और इसका फायदा देश को कितना मिलेगा?
देखिए, ऐसा है कि ये काफ़ी मूर्खता है कि हमेशा जो है, और इसमें भी जो है, हम लोग खाली जो विदेश में काम का होता है उसी को सोचते हैं। सारी ऊर्जाएं वो यूज़फुल हैं, सारे ईंधन जो हैं वो ख़राब होते हैं, उनका कम्बस्चन जो है उससे ईंधन एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये कहना कि साहब ये ईंधन ख़राब है, ये ईंधन अच्छा है, ये इज़ वेरी रॉन्ग। ये हमारी टेक्नोलॉजी जो है उस ईंधन को ठीक करती है, चाहे कोल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे पेट्रोल हो, ये सब ईंधन जो हैं वो पोल्यूटिंग है। हमारे पास में टेक्नोलॉजीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इनको हम नॉन पोल्यूटिंग बनाएं। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो इंजीनियरिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारी इंजीनियरिंग जो है उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम बच्चे तैयार करते हैं लेकिन सब बाहर चले जाते हैं, सब जो है वो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। वी नीड वेरी गुड इंजीनियर्स हु विल वर्क ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़। अब जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हमें हमेशा नेचर से लर्न करना चाहिए, नेचर में कभी भी एक ईंधन नहीं होता है, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसीलिए जितने भी ईंधन हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे ये सोलर हो, चाहे पेट्रोल हो, हर एक को जो है उसका महत्व है, एंड वी शुड हैव अ जुडिशियस वे ऑफ यूटिलाइजिंग देम इन एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी से हम सब चीज़ें करेंगे तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, क्योंकि सपोजिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, क्योंकि ये फेल होने के बहुत चांसेस होते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। आपके घर में हर चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तो आप भूखे भी मर जाएंगे क्योंकि आपका फ्रिज नहीं चलेगा, आपके पास आपकी गैस नहीं चलेगी। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वी शुड हैव मैनी मैनी मोर फ्यूल्स हेल्पिंग आवर लाइफ, क्योंकि एक फेल करता तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। हमें चाहिए ये कि जितने भी ये फ्यूल्स हैं इनको किस तरह से ऐसे प्रॉपरली यूटिलाइज करा जाए जिससे इनका पोल्यूशन बहुत कम हो। और उसके लिए वी रिक्वायर वेरी गुड अमाउंट ऑफ R&D एंड वेरी ग्रेट इंजीनियर्स, जो बोथ आर लैकिंग इन दिस कंट्री। तो मेरा ये कहना होगा इस इंटरव्यू के थ्रू कि वी शुड क्रिएट कंडीशंस टू क्रिएट इंजीनियर्स वर्किंग ऑन हार्डवेयर, वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज फॉर द कम्बशन ऑफ द फ्यूल प्रॉपरली। वो सब इंजीनियर्स खत्म हो रहे हैं, हम हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है दिस शुड बी मोर फोकस ऑन।
डॉक्टर अनिल राजवंशी जी, आपने बताया कि आपको जुनून ने या अरोगेंस ने देहात की तरफ खींचा और यहाँ आप अपने को सिद्ध करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यही सवाल है कि ग्राम विकास में IITians IIMs जो भारत में ठहरते ही नहीं है या ठहरते हैं तो कॉरपोरेट में काम करते हैं, ग्राम विकास में इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इनकी कितनी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है, क्या बताएंगे आप?
देखिए, यही सबसे बड़ी ट्रेजडी है इस देश में। जब आप अच्छे हैं स्टूडेंट तो आप इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, MBA में जाएंगे। जो बिल्कुल बेकार के स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में जाते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी ट्रेजडी वो ये है कि द बेस्ट टैलेंट डज नॉट कम इन एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर में आएंगे तो अपने आप ही आप गांव से जुड़ेंगे, अपने आप ही जो है आप फार्म से जुड़ेंगे, अपने आप ही जो है आप उसको सोचेंगे भाई क्या करना चाहिए टू मेक द लाइफ बेटर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक राइट फ्रॉम बिगनिंग एक अभियान होना चाहिए, जो कि सब स्कूल के बच्चों को, सबको ये कहा जाए। इसको पढ़ाने का वो नहीं है कि, लेकिन ये है कि आफ्टर ऑल आप कभी सॉफ्टवेयर नहीं खाएंगे, आप नट बोल्ट्स नहीं खाएंगे, आप खाना खाएंगे। ये फोकस नहीं है। ये फोकस अगर बच्चों में बताया जाए कि भाई सारा जो हमारी लाइफ है वो खाने से आती है, और खाना कौन प्रोड्यूस करता है? फार्मर प्रोड्यूस करता है। और उसकी लाइफ कैसी है, उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए, ये अगर राइट फ्रॉम बिगनिंग अगर फोकस करा जाए तो बच्चे जो है अपने आप ही गांव से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जब वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे तब फिर बहुत चीज़ें चेंज होंगी। जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी, अब इसे जैसे मैं आया यहाँ पर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी और उनको ट्राई करा सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं तो अकेला आदमी हूँ। ऐसे मेरी तरह से जो है लाखों लोग होने चाहिए जो कि IIT से जुड़े हों और वो जो है हेल्प करें। और मैं समझता हूँ कि जो आज ये नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है स्टार्टअप्स का, तो स्टार्टअप में बहुत बड़ी देन हो सकती है स्टार्टअप की, कि उनको जो स्टार्टअप जो होते हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट बनते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो ये कहें, और उसमें सरकार जो है उनको हेल्प कर सकती है कि हम 25% जो फंड देंगे वो एग्रीकल्चर बेस पर देंगे। अगर तुम्हें लेना है तो तुम एग्रीकल्चर बेस क्या कहते हैं स्टार्टअप शुरू करोगे, इससे जो है बहुत चीज़ें चेंज होंगी। अगर हम इस तरह का शुरू कर दें, और वो जो एग्रीकल्चर फंड्स हैं, जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, उसमें सरकार हेल्प कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि देर शुड बी अ डिज़ायर फॉर एवरीबडी टू हेल्प द कंट्री। अगर हमारा डिज़ायर जो है करप्शन और अपनी जेब भरने का है तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। भाई हम सब छोड़ छाड़ के आए, इतना हम राइजिंग स्टार थे अमेरिका में, सोच के कि भाई यहाँ कुछ करेंगे, हमने करा क्योंकि हम जो करते हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उससे देश को और विदेश को कहीं फ़ायदा हुआ ये बोनस है, लेकिन हम काम जो करते हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। और हमेशा बच्चों को यही हमने कहा कि जो भी काम करो वो उसमें तुम्हें पैशन होना चाहिए और उसमें हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। हैप्पीनेस जो है शुड बी द गाइडिंग फोर्स ऑफ वर्क।
डॉक्टर अनिल राजवंशी, अंतिम सवाल, ग्राम विकास में आप पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया है, आपका जुनून अभी भी टिक पाया है या बढ़ा है, और आप हमें हमेशा आगे की सोच रखते हैं, अगले 25 साल में क्या इन्वेंट होने वाला है आप आज ही सोचते होंगे, कैसे रहेगा आपका आगे का कार्यकाल, क्या सोच है आपकी?
देखिए, आगे का कार्यकाल के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो उससे हमें हैप्पीनेस मिलती है, और हैप्पीनेस जब उस मुकाम पर पहुंच जाओ तो उसमें गहराई से चीज़ों को सोचने का एक कार्यक्रम शुरू होता है। तो जब आप किसी भी चीज़ पर गहराई से सोचेंगे वो स्पिरिचुअलिटी होती है, चाहे वो मैं सूर्य ऊर्जा पर काम कर रहा हूँ, चाहे किसी ईंधन पर काम कर रहा हूँ, जब गहराई से सोचने लगते हैं तो दैट इज़ वेयर द स्पिरिचुअलिटी कम्स, बिकॉज सारी चीज़ें जो गायब हो जाती हैं उसकी स्पिरिट रह जाती है। और वो उसका क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब माइंड जो है फुल फ्लेज्ड एक किसी चीज़ पर काम करता है तो इट वर्क्स इन अ वेरी रिमार्केबल मैनर, एंड व्हेन द माइंड बिकम्स वेरी पावरफुल देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग थिंग्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। तो मेरा जो कहने का जो मेरा जो क्या कहते हैं एक तरह से मैं इस इंटरव्यू के थ्रू बच्चों को बताना चाहता हूँ कि कुछ भी करो बट गहराई से सोचो, और जब गहराई से सोचोगे तो बाकी चीज़ें जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आगे क्या होगा ये सब सोचना नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद में क्या होगा ये सब सोचना नहीं चाहिए, जो भी काम कर रहे हो उस पर गहराई से सोचो, एंड दैट गिव्स अ वेरी ट्रेमेंडस सेटिस्फैक्शन। मैं कितना लिखता हूँ पढ़ता हूँ, मैं ये सोच के नहीं पढ़ता हूँ कि कौन क्या सोच रहा होगा या ये क्या सोच रहा होगा, मैं खाली ये देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम है एंड हाउ डू वी सॉल्व दैट। और जब इसको करोगे तो कभी भी अनसेटिस्फैक्शन नहीं होगा और कोई चीज़ वो नहीं होगी। दैट्स ऑल।
धन्यवाद डॉक्टर अनिल राजवंशी जी, आपसे बात करके बहुत ऊर्जा मिली, उम्मीद है श्रोताओं को भी ये बातचीत बहुत आनंद देने वाली उनको भी लगी होगी। आपने आकाशवाणी के लिए समय निकाला, बातचीत की, इसके लिए आपका धन्यवाद, और पुनश्च आपको पद्मश्री से सम्मानित किया उसके लिए भी आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच।